फिर आप देखिए कि आयत नंबर 1 से 5 के बाद आयत नंबर 6 से 10 तक जो है वो बताया जा रहा है कि मुसलमानों का मामला मुसलमानों के साथ कैसे होना चाहिए। कहा जा रहा है कि मुसलमानों का मामला आपस में अखुवत की बुनियाद पर होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कोई ग्रोही असबियत आपस में हो तो उसकी बिना पर दूसरे के खिलाफ कदम उठा ले, बल्कि क्या करे कि अहले ईमान का आपस में मामला ईमान की बुनियाद पर हो और अखुवत की बुनियाद पर हो, और इसी बुनियाद पर फर्द को भी और जमात को भी आपस में ताल्लुकात जो है वो कायम करने चाहिए। फरमाया या अय्युहल्लज़ीन आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, इन जाअकुम फासिकुन, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास आए, और फासिक कौन होता है, जैसे फसका, फसका से है ना, तो मानी है अल्लाह की हुदूद से निकल जाने वाला है ना, बद किरदार, ये सब फाइल इस्तेमाल हुआ यहाँ पे, कि अगर कोई फासिक तुम्हारे पास आए, और इस आयत का भी आगाज कैसे है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, फिर ईमान लाने वालों को मुखातिब किया जा रहा है, ऐ ईमान लाने वालों, अगर आए तुम्हारे पास कोई बद किरदार, अगर आए तुम्हारे पास कोई नाफरमान फासिक बिनबाइन खबर के साथ, बी जो है वो मैयत के मानी में खबर लेकर, और नबा कहते हैं बड़ी खबर को, आम खबर को नहीं, बड़ी खबर लेकर, अहम खबर लेकर तुम्हारे पास आए, फतबयनू, तो तुम तहकीक कर लो। अब आप देख लें कि फतबयनू, वैसे तो बयन जो है वो रोशन को कहते हैं, वाजे को कहते हैं, लेकिन शद भी आ गई है, अल्फाज की ज्याती है, फतबयनू, तो फिर क्या करो कि फिर तुम जो है वो अच्छी तरह तहकीक कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि बगैर तहकीक के यूं ही जो है तुम अपना मामला कर लो, बल्कि क्या करो तहकीक कर लो, अंतुसीबु कौमन, कि तुम नुकसान पहुंचाओ। और आपको पता है ना सौब के मानी क्या होते हैं, तीर का निशाने पर लगना, इसी से मुसीबत लफ्ज है, अंतुसीबु कि तुम नुकसान पहुंचाओ, कौमन किसी कौम को, कौम एक ग्रोह जमात को कहा जाता है, बिजहालतिन नादानी के साथ, तो ऐसा ना हो कि तुम जो है नादानिस्ता या नादानी के साथ जो है किसी दूसरी कौम को नुकसान पहुंचा दो, फतुस बेहू, और फिर तुम हो जाओ, फिर तुम्हारी हालत कैसी हो कि तुम हो जाओ अला पर मा जो, यानी उस बात पर जो तुमने की है उस पर तुम हो जाओ, कैसे, फाल तुम जो किया है तुमने, नादिमीन नादिम शर्मिंदा। ये आयत नंबर 6 और इसके बाद आयत नंबर 7, ये दोनों आयतें कहते हैं, मुफस्सरीन का बयान है कि ये आयत वलीद बिन उकबा के बारे में नाजिल हुई। तो वलीद बिन उकबा बिन अबी मुईत जो थे ये कौन थे, और इनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था। मुफस्सरीन कहते हैं कि कबीला बनी मुस्तलिक जब मुसलमान हो गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीद बिन उकबा को भेजा ताकि इन लोगों से ज़कात वसूल करके लाए। और अब आप देख लें कि ये उनके इलाके में पहुंचे तो किसी वजह से डर गए, किसी वजह से डर गए, और वापस आकर जो है वो आपसे कह दिया कि वो ज़कात देने से इनकारी हैं, बल्कि वो तो मुझे कत्ल कर देना चाहते हैं। अब आप देखें कि किसी भी वजह से वो डर गए और अहले कबीला से मिले बगैर मदीना वापस आए, रसूलुल्लाह से शिकायत कर दी कि उन्होंने ज़कात देने से इनकार कर दिया और मुझे कत्ल करना चाहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खबर सुनकर सख्त नाराज हुए और आपने इरादा किया कि इन लोगों की सरकूबी के लिए, उनको मुती करने के लिए एक दस्ता रवाना करें। बाज रवायात में आता है कि आपने वो दस्ता रवाना कर दिया था और बाज में ये बयान हुआ है कि आप रवाना करने वाले थे। बहरहाल सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि बनी मुस्तकिल के सरदार कौन थे, बनी मुस्तलिक के सरदार कौन थे, हारिस बिन दिरार, और ये थे उम्मिल मोमिनीन हजरत जुवैरिया के वालिद रजी अल्लाह अन्हा। इस दौरान में कहते हैं कि हजरत हारिस बिन दिरार खुद एक वफद लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंच गए और उन्होंने अर्ज किया कि खुदा की कसम हमने तो वलीद को देखा तक नहीं, खुदा के जकात देने से इनकार करते और इनके कत्ल के इरादे का कोई जो है प्लानिंग करते, तो उसका तो सवाल भी पैदा नहीं हुआ। हम ईमान पर कायम हैं और जकात देने से हमें हरगिज इनकार नहीं है। इस पर यह आयत नाजिल हुई और जो है वो थोड़े बहुत लफ्जी इख्तलाफ से ये आयत जो है वो ये हदीस जो है वो मुख्तलिफ रावियों से मिलती है। अच्छा, अब आप देखें कि यहां पर मुसलमानों को क्या उसूली हदायत दी गई। मुसलमानों को जो एक उसूली हदायत दी गई वो ये है कि एक बेबुनियाद खबर पर एतमाद नहीं करें, क्योंकि जैसे अगर इस बेबुनियाद खबर पर एतमाद कर लिया जाता तो एक अजीम गलती जो है वो रुनमा हो सकती थी। तो कहा जा रहा है कि जब भी कोई अहमियत रखने वाली खबर हो जिसका एक बड़ा नतीजा निकल सकता हो, वो तुम्हें खबर मिले तो उसको कबूल करने से पहले ये जरूर देख लो कि खबर लाने वाला कैसा आदमी है। तो मुसलमानों के लिए इसमें से ये उसूल निकलता है कि किसी शख्स या ग्रोह के खिलाफ कोई कार्रवाई मुखबिरों की बिना पर नहीं कर डालनी चाहिए, बल्कि वो मुखबिर जो हैं उनकी सीरत और उनका किरदार जो है वो भरोसे के अगर लायक है तो वो शख्स कैसा है जो कि खबर देने वाला है, ये बहुत जरूरी है। तो चूंकि यहां पे हर खबर के लिए नहीं कहा गया, यानी कि हर शख्स के बारे में भी नहीं कहा और हर खबर के बारे में भी नहीं कहा, तो बिनबाइन खबर हो अहम, ऐसी खबर जिसके जिंदगी पर बड़े अहम असरात जो है वो मुरतब होते हों। और फिर दूसरी बात जो बताई गई वो क्या है कि अगर फासिक लेकर आए, अगर एक अच्छे किरदार वाला कोई खबर लेकर आता है जिसकी सीरत और किरदार पर सबको जो है वो इत्मीनान है, तो फिर उसकी बात के मान लेने में जो है कोई मसला नहीं है, फिर उसकी बात जो है वो मानी जा सकती है। तो अब यहां पर जो है इससे जो है फिर क्या बात पता चलती है कि मसलन एक मसलन ये है कि आप किसी के घर में जाकर दरवाजा खटखटाते हैं और जब आपने दरवाजा खटखटाया तो अब अंदर से कोई भी आकर ये कहता है कि आप अंदर आ जाएं, तो मुफस्सरीन और जो उसूल अखज करते हैं इस आयत से वो क्या कहते हैं कि अब उनके बताने पर आप अंदर जा सकते हैं। अब तहकीक करने की ये जरूरत नहीं कि वहां पर खड़े होकर तहकीक कर लें कि बच्चे ने कहा है पता नहीं घर वाले ने इजाजत दी है कि नहीं, है ना, या नौकर ने कहा है पता नहीं मालिक क्यों नहीं अंदर से बाहर आया। तो ये तो एक आम बात है ना कि अंदर जो है वो जाया जा सकता है, लेकिन अगर कोई खबर जो है वो बहुत अहम हो, मसलन अब जैसे अब लश्कर को भेजा जाए या ना भेजा जाए, वो लोग हमारे अब जैसे कि उन्होंने ज़कात देने से इनकार कर दिया, ये बात कही थी ना आकर, तो ये खबर जो है ये एक अहम खबर है। तो अब ऐसा ना हो कि ऐसे ही जो है वो बात की तशहीर हो जाए और बेबुनियाद अफवाह हो वो सामने आए और उस पर जो है वो अमल कर लिया जाए। अच्छा, इसी से फिर उलमा ने जो है और क्या किया, इसी से उलमा ने और अहकामात भी जो है वो निकाले। जैसे आप इस बात को भी आप याद रखें कि उलमा ने और क्या अहकामात निकाले, जैसे मुहद्दिसीन ने जो है और फने रिजाल के आइमा ने, मुहद्दिसीन और फने रिजाल के आइमा ने सूरत हुजरात की इसी आयत इंजा अकुम फासिकुम बिनबाइन फतबयनू को माखिज करार दिया है, यानी कुरान में जरा और तादील का माखिज करार दिया है। कुरान से कैसे पता चले कि मसलन अगर कोई भी हदीस है और हदीस जो है वो सही है कि गलत है, क्योंकि जब उसको जमा किया गया तो इस आयत को जो है जिरा और तादील का माखिज बुनियाद करार देकर जो है फिर क्या किया जाता है कि जो लोग हैं उनकी पूरी बायोग्राफी, उनके पूरे हालात, उनका उसने कभी झूठी गवाही तो नहीं दी थी, वो हराम जो है वो खाने वाला तो नहीं था, कमाने वाला तो नहीं था, झूठा तो नहीं था, और भी बहुत सी बातें। तो आप इस बात को, मतलब मैं आपको यहाँ पे बस एक उसूली बात बता रही हूँ कि हमारे मुहद्दिसीन ने ऐसे रावी जिनके हालाते जिंदगी मजहूल हैं, उनका पता ही नहीं हालाते जिंदगी का, तो फिर उन्होंने इस पर जो है वो बहुत जिरा की है। हो सकता है कि उसने झूठी कोई हदीस घड़ दी हो, है ना। तो इस तरह पता चलता है कि मौजू हदीसें कौन सी हैं और सही हदीसें कौन सी हैं। जैसे बाज़ बाज़ लोग जो है, जैसे हजरत कुछ एक ग्रोह है जो कि जो है वो हजरत फातिमा रजी अल्लाह के घराने के लिए, उन्हीं को मकाम देने के लिए जो है कुछ बातें उन्होंने बना ली हैं, है ना, या फिर और किसी चीज की बारे में भी कुछ कहना। तो बहरहाल जो असल बात है कि कुरान में जिरा और तादील का ये माखज है, इससे पता चलता है, और फिर उलमा ने इसी पर जो है वो अहदीस जो है उनको परखा है, तहकीक की है, और जो रवायतें हैं फतबैयनू, उससे क्या बात पता चलती है कि रवायत की तहकीक, रावी की सकाहत और अदालत, फकाहत, रावी के हालात, हर लिहाज से उसको जो है वो परखा है। तो ऐसे नहीं है कि ऐसे ही हदीसें जो है वो मुरतब कर दी गई। और एक बात फिर हमारे लिए यहां से अमल के लिए क्या निकलती है कि यहां पर जो बात कही जा रही है कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तो तमाम ईमान लाने वालों से कहा जा रहा है कि अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो तहकीक कर लिया करो, कहीं ऐसा ना हो कि किसी ग्रोह को लाइल्मी में नुकसान पहुंचा बैठो और फिर अपने किए पर परेशान हो। तो इससे क्या बात पता चलती है, इससे ये बात पता चलती है कि हम भी, मसलन हमें किसी ने ये बात कही कि खानदान ही के बारे में कि फलां जो है वो आपके बारे में बहुत बुरा भला कह रहा था, तो बाद बगैर तहकीक के, हो सकता है कहने वाले ने झूठ बात कही हो या वैसे ना कही हो जैसे कि उसने कही थी, तो हम क्या करते हैं कि फौरन एक रद्द अमल जो है उसका इख्तियार कर लेते हैं। तो ये बात सही नहीं है कि फौरन सुनकर जो है वो लाल भभोका हो जाना किसी बात को, तो क्या करना चाहिए कि उसकी जो है वो तहकीक करनी चाहिए। तो फिर आप देखें कि आगे जो है ये आयत नंबर 7, इसमें अल्लाह ताला क्या कहते हैं, वालमु, और खूब जान लो, अन्ना फीकुम रसूल अल्लाह, कि तुम्हारे दरमियान अल्लाह का रसूल मौजूद है। कौन है? तुम्हारे दरमियान अल्लाह का रसूल मौजूद है। लो युतीयुकुम फी कसीरम मिनल अम्री, अगर वो बहुत से मामलात में तुम्हारी बात मान लिया करे, लो युतीयुकुम, अगर वो तुम्हारी अतात कर ले जो तुम कहते हो, फी कसीरम मिनल अम्री, बहुत से मामलात में, तो होता क्या, लानित तुम, तो तुम खुद ही मुश्किलात में मुब्तिला हो जाते। तो ऐन नून ता, इसके मानी क्या है, किसी शख्स का ऐसी मुसीबत में फंस जाना जिसमें इसके तलफ हो जाने का अंदेशा हो, उसके खत्म हो जाने का अंदेशा हो, ऐसी मुसीबत के उससे जो है फिर उसको इतना नुकसान हो कि वो उसमें जो है वो फिर खत्म भी हो सकता है। यानी आम मुसीबत नहीं, आम परेशानी नहीं, बल्कि क्या कहा जा रहा है कि सख्त परेशानी में तुम जो है फिर मुब्तिला हो सकते हो। वलाकिन अल्लाह हब्बाबा इलैकुमुल ईमाना, मगर अल्लाह ताला ने जो है वो हब्बाबा मोहब्बत दी है। और आप देखें हब्बाबा के साथ इला का सिला आया है, ये एहतमाम खास की तरफ जो है वो इशारा है। तो अल्लाह ताला ने महबूब बना दिया तुम्हारे लिए अल ईमाना, ईमान। तो अल्लाह ताला ने इस जहमत से बचाने के लिए क्या एहतमाम किया कि ईमान को तुम्हारे दिलों में, तुम्हारी निगाहों में महबूब बना दिया, उसको तुम्हारे दिलों में रचा बसा दिया। हब्बाबा इलैकुमुल ईमाना वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम, और मुज़य्यन किया तुम्हारे दिलों में, तो ईमान की तुम्हें मोहब्बत दी और इसको तुम्हारे दिलों में दिल पसंद बना दिया। तो इसके मानी ये हैं कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे अंदर ईमान की मोहब्बत पैदा कर दी, उसकी महबूबियत पैदा कर दी, और दूसरी बात यह है कि ईमान को मुज़य्यन करके, खूबसूरत बना के तुम्हें दिखा दिया। अब दूसरी तरफ क्या है, वह कर रहा इलैकुम, तो हब्बाबा का ऑपोजिट यहां पे कर रहा है, और इसके लिए भी इला का सिला आया है, वह कर रहा इलैकुम, मानी क्या है यहां पे भी कि एहतमाम खास की तरफ इशारा है, लेकिन कर रहा इलैकुम कह के तुम्हें मुतनफर कर दिया। अब ये नहीं कि तुम्हारे लिए नापसंद कर दिया, मुतनफर कर दिया, क्योंकि कर रहा हब्बाबा पे भी ये नहीं कि पसंदीदा बना दिया, महबूब, क्योंकि शद आई है ना, बहुत दिल पसंद बनाया, और यहाँ पे भी ये है कि बहुत काबिले नफरत बनाया, इलेकुम तुम्हारे लिए। अब यहाँ पे तीन बातें कही हैं, क्या? नंबर एक अल कुफरा, नंबर दो वल फुसूका, नंबर तीन वल इसयान। तो वैसे तो बाज जगह कुरान में कुफर की जगह भी फिस्क इस्तेमाल हुआ है, और यहाँ पे ये लफ्ज जो है कुफर के साथ फिस्क का आया है। मुराद ये है कि अगर तुम्हारी बात ज्यादा मान ली जाती तो तुम कैसी मुश्किल में पड़ जाते, तुम बहुत ही ज्यादा मुश्किल में पड़ जाते, लेकिन अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में ईमान को महबूब कर दिया और तुम्हारे दिलों में इसको जीनत दे दी। और किस चीज को नापसंद कर दिया, किसको मुतनफिर कर दिया? नंबर एक अलकुफर को, नंबर दो फुसूक, फिस्क की जमा है, और मुराद ये है कि अल्लाह की नाफरमानी, अल्लाह की नाफरमानी को। और इसयान जो है यहाँ पे कहा जा रहा है इसयान, और ये मासियत से है, है ना? और मासियत क्या होता है? कहते हैं कि यहाँ पे ये लफ्ज जो है, वैसे तो मासियत अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी और हर तरह की नाफरमानी के लिए आता है, लेकिन यहाँ ये रसूल की नाफरमानी के लिए आया है। इसी तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो खुल्फा हैं या उमरा हैं उनकी नाफरमानी के लिए भी, चूंकि उनकी नाफरमानी रसूल की नाफरमानी है। तो यहाँ पे जो बात बताई जा रही है वो क्या है कि अल्लाह ताला ने ईमान को तुम्हारा महबूब बनाया और उसे तुम्हारे दिलों में जीनत दे रखी है, और कुफर को और बदकारियों को और नाफरमानी को तुम्हारी निगाह में नापसंदीदा बनाकर रख दिया है कि तुम्हें ये गुनाह, गलतियां, नाफरमानियां अच्छी नहीं लगती। तो याद रखें कि ये फिस्क और इसयान जो हैं ये कहां से पैदा होते हैं, ये तो इनका शजर कौन सा है, इनका बीज क्या है? कुफर। फसूक और इसयान फिर निकलते हैं कुफर से ना, तो इसी शजरे मलऊना के ये बर्ग और बार हैं, ये इनके समरात हैं। तो अल्लाह ताला ने यहां पर कर्रहा के साथ कुफर, फिस्क और इसयान तीन चीजों का जिक्र किया और बताया कि ये जो किरदार है ना, ये काफिरों का किरदार है, फासिकों का है, और गुनाह करने वालों का, कि जो ऐसी खबर लेकर आते हैं जो कि पसंदीदा, यानी बगैर तहकीक के किसी बात का करना। और इस सिलसिले में हम भी ये बात याद रखें कि बाज़ औक़ात हमारे अंदर भी, आम मुसलमानों के अंदर भी ये बात पाई जाती है, यानी ये जो फासिक हैं या गुनाहगार हैं कौन है? मुसलमानों में से है ना। एक तो यह कि आम उन्हीं में से हो, वही हो। दूसरा यह कि मुसलमानों में से जो ये किरदार है उससे अपने आप को जो है वो बचाना है। यानी अगर मुसलमानों में किसी में ये किरदार पाया जाता है कि झूठी खबरें, और उन खबरों में अपनी तरफ से कोई बात लगा दी, और हत्ता कि इस वजह से बाज़ औक़ात तलाक हो जाती है, बाज़ औक़ात लोगों का कारोबार खत्म हो जाता है, बाज़ औक़ात जो है वो कतअ रहमी हो जाती है, है ना? तो ये जो किरदार है इसको इस्लाम सख्त नापसंद करता है, और हमारे सामने अमल के लिए ये बात लाता है कि हम सुनी सुनाई बात जो है उसको आगे न किया करें, और सुनी सुनाई बात पर यकीन भी ना किया करें। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी शख्स के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि वो सुनी सुनाई बात को जो है वो आगे फैला दे। तो फिर क्या फरमाया जा रहा है कि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम की जाए, वो ज्यादा मसलतें जानते हैं, उन पर वही उतरती है, और हमें क्या करना है? हमें अल्लाह के और अल्लाह के रसूल के पीछे चलना है, ना कि अल्लाह के रसूल को अपने पीछे चलाया जाए। अपने पीछे चलाने का मतलब क्या है? अपने पास से झूठ बोलना, जैसे उस जमाने में अगर किसी से गलती हो गई, और या फिर ये कि आज के दौर में हम अपनी मर्जी की बात करें और फिर उसको कहें कि हमें सुन्नत से यही पता चलता है, हमें कुरान से यही पता चलता है, या फिर क्या, या इसके मानी क्या है कि तुम खुद ब खुद मशक्कतें पड़ जाओगे? फिर इसके मानी ये हैं कि ऐसा करने से क्या होगा कि अगर हम जब हम अपनी ख्वाहिशात की पूजा करते हैं, जब अपने ख्याल और हमारे जो इरादे हैं उनके पीछे चलते हैं, तो फिर होता क्या है? हम खुद ही मुसीबतों में पड़ जाते हैं ना। और एक सच जो है वो 100 झूठों से निजात दे देता है, और एक बात कि अपने दिल का किबला दुरुस्त कर लिया, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अतात, दीन इस्लाम की अतात, फिर जो है 100 खुदाबंदों से छूट मिल जाती है। एक को कुछ करें, दूसरे को करें, तीसरे को करें, चौथे को करें, आखिर करें तो किसको करें, मुसीबत में पड़ गए। अब जब तय कर लिया कि मैंने वो करना है जो मेरे अल्लाह ने फरमाया और मेरे रसूल ने फरमाया, तो फिर क्या है, फिर इंसान मुसीबत और मशक्कत में नहीं पड़ता। उलाइका हुमुर राशिदून, यही वो लोग हैं जो के रुश्द पर हैं, यही वो लोग हैं जो राह याफ्ता हैं। अब यहां पे ये नहीं कहा, ये भी तो कहा जा सकता था उलाइका हुमुल मुहतदून, लेकिन याद रखें रुश्द जो है ये हदायत के बाद आता है, उससे अगला दर्जा है। हदायत तो रहनुमाई है ना, रुश्द ये है कि जो सीधी रहनुमाई मिल गई है फिर इस्तकामत के साथ उस पर चलते चले जाएं। तो यही वो लोग हैं कि जिनके दिलों में ईमान की अहमियत है। बार बार ईमान लाने वालों को मुखातिब किया जा रहा है ना, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर अकीदा रखते हैं। अकीदा ठीक है, उनके दिल के ख्यालात भी ठीक रहते हैं और उनके अमल भी ठीक रहते हैं। अगर कमी बेशी हो जाए तो अपनी वो फौरन इस्लाह कर लेते हैं, फिर वो गलतियों पर इसरार नहीं करते। फजलम मिन अल्लाह व निअमा, अल्लाह का फजल और एहसान। तो ये जो है ना, यही लोग रुश्त पर हैं, और उनका रुश्त पर रहना क्या है, नंबर दो फजलम मिन अल्लाह, ये अल्लाह का फजल है, ये नकद इनाम अल्लाह ने दिया उनके ईमान का। तीसरा क्या है, व निअमा, और ये अल्लाह का एहसान है जो अल्लाह ताला ने उनको जो है वो दिया है। तो मानी ये है कि ये आयत जो है ना, ये उलाइका हुमुर राशिदून से लेकर आयत नंबर 8 तक, यहाँ पे सहाबा कराम जो है उनकी फजीलत, उनका ईमान और उनके रुश्द और हदायत जो है ना उसको बयान किया जा रहा है कि सहाबा इंसान थे, उनसे गलती हो जाती थी, लेकिन इनका मकाम क्या है, उलाइका हुमुर राशिदून फदलम मिन अल्लाह व निअमा वल्लाहु अलीमुन हकीम। ऐसे ही लोग अल्लाह के फजल और एहसान से रास्त रो हैं और अल्लाह अलीम और हकीम है। तो अल्लाह का ये फजल और एहसान कि किसी को ईमान की दौलत दे दे और उसको रुश्द पर ले आए और उसको जो है वो नेकियों में आगे बढ़ाता चला जाए, ये कोई अंधी बांट नहीं है, ये नेमत उज़्मा है, और जिसको वो चाहता है अता करता है, और उसकी ये अता जो है वो उसकी हिकमत की बिना पर है। क्यों, वल्लाहु अलीमुन हकीम, कि अल्लाह जानता है, खूब जानता है, हकीम और खूब हिकमत वाला है। तो आप देख लीजिए कि यहां पर अल्लाह ताला क्या बताते हैं, बता क्या रहे हैं कि जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं उनका रवैया मुख्तलिफ है, और जो मुनाफिक हैं उनका रवैया मुख्तलिफ है, जो काफिर हैं उनका रवैया मुख्तलिफ है ना। तो बहुत से अमल के उसूल है जो हमारे सामने आते हैं, और फिर हमें करना क्या चाहिए, हमें करना ये चाहिए कि जो आयात और हदीस अब हमारे सामने आ गई हैं तो इसकी रोशनी में अपनी जिंदगी के धारे बदल लें, अपनी सोचों के जाविये बदल लें, अपनी जो किरदार का रुख है, अपने दिलों का जो किबला है उसको हम बदल लें, और बस क्या करें कि फिर जो है वो अमले स्वाले जो है उसमें ही हम आगे ही आगे बढ़ते चले जाएं। हजरत हातिब बिन अभी बलता रजी अल्लाह का वाकया भी जो है आपको पता है ना कि उनसे भी गलती हो गई थी कि उन्होंने आपका एक राज जो था वो अहले मक्का को बता दिया था, क्योंकि जब फतह मक्का होने का वक्त था तो आपने सहाबा से मशवरा किया था और साथ ही ये कहा था किसी को बताना नहीं, अभी किसी को बताइएगा नहीं। तो चूंकि इनके घर वाले जो थे वो मक्का में मौजूद थे तो उन्होंने कहा इस तरह अहले मक्का जो है वो मेरे जो है वो एहसान मंद होंगे, तो उन्होंने उनको खबर दे दी थी और अल्लाह ताला ने आपको वही के जरिए बता दिया था, है ना। तो आप आगे जाके इसको भी पढ़ेंगी, तो उनसे भी गलती तो हुई थी ना, लेकिन फिर जो है उन्होंने क्या किया था कि बहुत वो रोए धोए और उन्होंने फिर माफी मांगी, और ये बदरी सहाबा में से थे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको माफ कर दिया। इसी तरह हजरत अबू लबाबा रजी अल्लाह से भी गलती होगी थी ना, लेकिन उन्होंने खुद अपने आप को मस्जिद नबवी के एक सुतून से बांध दिया था कि जब तक मेरी माफी नाजिल ना होगी मैं अपने आप को इसी सुतून से बांधे रखूंगा। और फिर वो ये भी चाहते थे, जैसे लोगों ने चाहा भाग कर आए बताया कि माफी नाजिल हो गया, कहा कि नहीं, जब तक अल्लाह के रसूल मुझे नहीं खोलेंगे उस वक्त तक जो है मैं, मतलब मैं नहीं चाहता कि मेरी रस्सी कोई खोले ना। तो हत्ता के आपने जिस सुतून से आपको बांधा था अपने आप को, उसको उस तवाना तो तौबा कहा जाता है कि आपकी अजीम बरकत और तासीर का यह हाल कि उस सुतून के सामने हाजिर होकर, यानी आपने उसके उससे अपने आप को बांध कर अल्लाह से तौबा की थी ना, तो वो सुतून ही कैसा सुतून है, ये तौबा वाला सुतून। तो बहरहाल हमें ऐसे बहुत से वाकयात मिलते हैं। तो अमल के लिए फिर उसूल क्या निकला अब तक, आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 8 तक क्या उसूल निकला कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अताअत की जाए, और अब तक की जिंदगी में जो कमी बेशी हुई है उस पर इस्तगफार किया जाए, माफी मांगी जाए, और जो है और क्या किया जाए, और फिर उसके बाद जो है अपनी आइंदा जिंदगी जो है उसकी बुनियाद ईमान पर और हुस्ने अमल पे रखी जाए। अब छोड़ दे ये बातें कहना कि समझ में नहीं आती, मुश्किल लगता है, अमेरिका के अंदर है, कनाडा के अंदर है, और अब इतना भी क्या करना और इतना भी क्या कहना, और फिर ये तो दिलों की बात है, और फिर ऐसी बात है तो वैसी बात है। तो जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने बात कह दी है तो अब कुछ कहने के लाने का मौका बाकी नहीं रहता, तो क्या करो, नेकियों में आगे दौड़ो, आगे ही आगे जो है वो बढ़ते चले जाओ। तो इन आयात की तिलावत आपने एक दफा पहले सुनी है, एक दफा फिर सुने, फिर आगे चलते हैं।
والذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم